सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
प्रोफेसर जोशी, जैसे कि हम जब भारत की समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं और पूरा जो उसका ढांचा है, जिस तरह से उसको विकसित किया गया है, आज हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं अगर हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें, तो आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में और सरल भाषा में ये बताएं कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसका किस तरह का ढांचा है और कौन से उसमें महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको समझना जरूरी है।
देखिए, भारत की जो नेवल पावर है वो अपनी सामुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और पूरे विश्व में भी यदि हम देखें तो शक्ति की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है और हमारे पास 150 से 160 वॉरशिप्स हैं और 300 एयरक्राफ्ट्स हैं और इसको एंकर करने के लिए या कैरी करने के लिए दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। और इसके अलावा हमारे पास एक पूरा फ्लीट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि मेक इन इंडिया है, भारत निर्मित है, हमारा अपना होम ग्रोन है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की श्रृंखला है जो हमारे पास है, इसको हम और विकसित कर रहे हैं। और यदि हम देखें तो हमारी जो नौसेना को यदि हम देखें तो सरफेस फ्लीट होता है जिसमें कि 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लासेस के डिस्ट्रॉयर्स, और 17 इसमें फ्रिगेट्स होते हैं जिसमें कि शिवालिक और नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स शामिल हैं या सरफेस फ्लीट शामिल हैं। फिर हमारी एक सबमरीन आर्म है, पनडुब्बियां हमारी, और इसमें हमारे दो एक्टिव SSBNs होते हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट, और तीसरा जो है वो हमारा अरिधमान है जो कि 2026 में ही अब कमीशन होने की हम खबरें लगातार सुन रहे हैं। 17 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हमारे पास है। यदि हम हमारी नौसेना की एयर आर्म को देखें तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, 300 एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें कि MiG-29K है, डिसॉल्ट रफेल एम फाइटर्स हैं, P-81 पोइसडन मेरीटाइम पेट्रोल है, और इसी शक्ति में फिर आप देखें तो हमारे पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर है। हमारे पास SLBMs है जिसमें कि सागरिका जो कि K-15 सीरीज के मिसाइल्स हैं, K-4 हैं, जो कि सबमरीन से लॉन्च हो सकते हैं और ये एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डिटरेंट का काम करते हैं। K-15 की यानी सागरिका की श्रेणी की मिसाइल्स को हम देखें तो 750 से 800 किलोमीटर की श्रृंखला है, और यदि हम K-4 को देखें जो कि न्यूली कमीशन्ड मिसाइल्स हैं तो ये 3500 किलोमीटर की इनकी रेंज है। एयर डिफेंस को यदि देखें तो बराक 8 LRSAM हमारे पास है, ये इसराइल के साथ भारत ने स्वनिर्मित एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरा डिवेलप किया है जिसकी लॉन्ग रेंज होती है 100 किलोमीटर तक, और ये जो एरियल थ्रेट्स हमारे फ्लीट पर आ सकते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर हाइपोसोनिक शक्ति को देखें तो उससे भी लैस है अपनी नौसेना, तो हमारे पास ना लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, हालांकि बहुत मात्रा नहीं है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है और इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक होती है। तो अभी इसको और मॉडर्नाइज करते हुए ही हमने ये डिसीजन लिया है, हमने 15 वर्षों का एक प्लान बनाया है जिसमें कि हम बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी के कंसेप्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें हम देशों के साथ में साझा ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर स्वनिर्मित कर सकें, चाहे मिसाइल्स हों, वेसल्स हों या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों या एयर डिफेंस की श्रृंखला हो। इसराइल के साथ हम काम कर रहे हैं, रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसी श्रृंखला में हमने ये अभी 5,083 करोड़ का स्टिल सरफेस टू एयर मिसाइल और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के लिए हमने, ताकि हमारा एयर डिफेंस मजबूत हो, इसके लिए हमने नए दो कॉन्ट्रैक्ट।
जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम बायर से बिल्डर्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ये खबर भी है कि हम इतनी बड़ी संख्या में, जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि 6 जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हम ले रहे हैं और वर्टिकल लॉन्च मिसाइल ले रहे हैं, तो ये फिर खरीद की अभी हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, या इनको खरीद के हम खुद ही आगे डेवलप करना चाहेंगे?
नहीं, इसमें हम बिल्कुल डेवलपमेंट के रोल में हैं। तो आप जब ALH MK3 को देखते हैं तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मैरीटाइम रोल है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू 2900 करोड़ के करीब है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का 6 हेलीकॉप्टर्स के लिए साइन किया गया है, और इसके जो एंड यूजर होंगे वो इंडियन कोस्ट गार्ड होंगे। तो इसमें अपने शक्ति H1 इंजन लगे होंगे, इसमें 270 डिग्री सर्विलेंस रडार होगी। इसके अलावा यदि आप स्टोरेज को देखें तो मैनुअल ब्लेड और टेल फोल्डिंग ताकि स्टोरेज कॉम्पैक्ट हो, वॉरशिप स्पेस की जरूरत होती है वो हो, और इसका जो रोल है वो कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए जिसकी हमें आवश्यकता है, ऑफशोर इंस्टॉलेशंस के लिए और सेफ गार्डिंग द मरीन एनवायरमेंट के लिए है, और ये हमने अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है। हमारा जो VL स्टिल मिसाइल सिस्टम है जिसकी की वैल्यू 2182 करोड़ के करीब है, वो हमने रशिया के प्रमुख निर्माता के साथ साइन किया है। ये सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स हैं, और ये मिसाइल्स यदि हम देखें तो इंडियन नेवी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये एयर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, रैपिड एक्शन वाले, ऑल इफेक्टिव होते हैं, ऑल वेदर प्रूफ है, और अलग अलग प्रकार के जो एरियल थ्रेट्स हमारे फ्लीट्स के लिए आते हैं उसके लिए ये डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए है। और इसको यदि हम देखें तो भारत एक जिस तरह से इसराइल के पास है, हमारे पास भी अब एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर और सिस्टम है, और उसमें जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं जो आगे बिल्कुल जिसको कि कहें कि जो फेस होते हैं हमारे पूरे फ्लीट का, तो उनको बचाव देने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग डिफेंस पार्टनरशिप जो रशिया के साथ है, जिसमें अब हम को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, को प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो उस दृष्टि से हमने ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए हमने ये डील
जी। इससे प्रोफेसर जोशी और किस तरह का लाभ होगा, क्योंकि जो पूरा हमारा जो इसको विकसित करने का कार्यक्रम है उसमें बहुत सारा जो छोटे पार्ट्स हैं वो भी देश के अंदर बनेंगे और काफी छोटी छोटी इंस्टॉलेशंस यूनिट्स लगेंगी और काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप इस बारे में और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
देखिए, एक तो हम ये समझे कि जब इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट की भी बात आती है, रोजगार से लेकर के, और ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित अलग अलग डायमेंशंस हैं वो तो आते हैं, या जब हम लेते हैं तो एक दूसरे देश के साथ जब डिफेंस डील करते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आती है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यतः जब हम अपनी समुद्री सुरक्षा की ओर देखते हैं तो मैं उदाहरण दूं कि जैसे हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र है या हम पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र को देखें, तो वहां पर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसर की, एक ऐसे प्रणेता देश की भूमिका बनाई है जो दूसरे लाइक माइंडेड नेशंस के साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सामुद्रिक सुरक्षा, सामुद्रिक विकास, सामुद्रिक व्यापार को निर्बाध रखा जा सके और इसमें किसी एक देश का दबदबा ना हो। तो इसके लिए अमरीश जी, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज उस स्तर की होनी चाहिए ताकि पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि हमारी अपनी जो सामुद्रिक सीमाएं हैं वो हमेशा सुरक्षित रह सके। इसके अलावा फिर जो पूरा एक जहां जहां अलग अलग सामुद्रिक क्षेत्र है जहां पर हम एक्टिव हैं, वहां पर न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी फिर आवागमन निर्बाध रूप से हो सके। और यदि हम अपने देश के भीतर देखें तो फिर इससे अलग अलग किस्म के जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हैं वो तो निश्चित तौर पर बूस्ट होते हैं। और अब आपने देखा होगा एक और महत्वपूर्ण बदलाव जब हम अपने रक्षा सहयोग या रक्षा के क्षेत्र में जाकर के देखते हैं तो वो आया है, और वो ये है कि हम अपने की पब्लिक प्लेयर्स के साथ, यानी हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनके साथ साथ अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमने जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है वो हिस्टोरिक है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है जिसमें अपने जो ऐसे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बहुत इनोवेटिव हैं, या हमारी जो यूथ फोर्स है उनको इन्वॉल्व करने की दृष्टि से हमने किया है, तो इससे हमारी जो यूथ पावर है उसको भी एक बढ़ावा मिलता
जी।
है।
प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने ईयू के साथ जो हमने समझौता किया उसका जिक्र किया, तो ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम है कि जहां हम देश के अंदर ही अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करें रक्षा से संबंधित और खासतौर से समुद्री सुरक्षा से संबंधित, तो ये जो योजना है इसमें कितना समय लगने वाला है, कितने टाइम स्पेन में हम ये सारा काम पूरा करेंगे?
जब हम किसी भी एक देश के साथ इस प्रकार का कोई समझौता करते हैं तो वो एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें पूरा एक रोड मैप बनाया जाता है कि कौन से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि डायरेक्टली कहीं मैन्युफैक्चरिंग में या निवेश की दृष्टि से शामिल हो जाना, और इसमें यूरोपियन यूनियन के कई देश इस बात के लिए राजी हैं कि वो भारत में हमारी जो रक्षा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग है, रक्षा से संबंधित जिस तकनीक की हमें आवश्यकता होती है वहां सहायता करने की दृष्टि से सीधे सीधे इन्वॉल्व होंगे। तो अमरीश जी, ये हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। फिर कुछ हमारे हाई हैंगिंग रूट्स होते हैं, तो उसमें फिर एकदम स्क्रैच से कोई भी एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए, तकनीक लेकर के किस तरह से हम फिर उसको आगे लेकर के जाएंगे, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिर बाहर लेकर के जाएंगे, फिर इसकी बात होती है, डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जाने की बात होती है, अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स को निर्मित करने की और आगे ले जाने की बात होती है। तो इसमें फिर हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन, एक सप्ताह, 15 दिन या एक महीने या एक वर्ष में ये लक्ष्य पूरा हो सकता है, ये कई वर्षों के लिए एक रोड मैप बनाया जाता है और हम ये मान के चले कि इसको पूरा करते करते या इसके अधिकांश जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करते करते हमको 5 से 10 वर्ष का समय लग सकता है, पर जो ये उद्देश्य तय किए गए हैं ये भारत को एक बिल्कुल एक नई अलग टेंजेंट पे ले जाने के लिए ये तमाम हमारे जो हिस्टोरिक डिफेंस फ्रेमवर्क्स हैं जो हम अलग अलग देशों के साथ साइन करते चल रहे हैं और काम करते चल रहे हैं, तो इस दृष्टि से फिर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
जी प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि हमारी जो पूरी क्षमता है देश की रक्षा को लेकर और खासतौर से समुद्री सुरक्षा को लेकर, वहां हम किस स्थिति में खड़े हैं और अभी हमें और आगे क्या क्या करना है?
देखिए, जब हम भारत की ओवरऑल रक्षा कैपेबिलिटीज को देखते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि विश्व की अब जाकर के देखें तो सर्वोत्कृष्ट प्रणालियों में से एक है। 2026 में यदि देखें तो हम वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आते हैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज या हमारी जो रक्षा क्षमताएं हैं उनकी दृष्टि से, और एक इम्पोर्टर देश से हमने पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन करके एक मैन्युफैक्चरर की हम भूमिका में आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 1.54 लाख करोड़ का रहा है रक्षा के क्षेत्र में 2025 में। तो हमारे पास यदि हम मोटा मोटे बिंदुओं पर देखें तो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री असेट्स की जब अब बात करते हैं तो अपने पास एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रक्चर है जिसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड अलग अलग प्रकार के आप देखिए सबमरीन्स हैं, मिसाइल सीरीज है और एयर डिलीवर्ड वीपन्स हैं, लेकिन हमारी जो नीति है वो नो फर्स्ट यूज की है। तो हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उसके हिसाब से हम अपने न्यूक्लियर अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग कभी भी पहले नहीं करेंगे। लेकिन इसके उदाहरण दूं तो अपने पास लैंड बेस्ड अग्नि सीरीज है जो कि 8000 किलोमीटर तक की रेंज तक जाकर के घातक वार करती है, कर पाने में सक्षम है। यदि समुद्र में जाएं तो अरिहंत क्लास सबमरीन्स है हमारे पास और एयर डिलीवर्ड वीपन्स हैं। यदि एयर डिफेंस की ओर चलें तो अपने पास एक टायर्ड ग्रिड है जिसमें S-400 ट्रायम्फ है, 400 किलोमीटर की रेंज है, बराक 8 है और इंडिजिनस आकाश सिस्टम्स हैं। हम यदि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज को देखें तो ब्रह्मोस है हमारे पास और ये दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और अग्नि की अलग अलग श्रृंखला में अपने पास मिसाइल्स हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यदि आप अपनी वायु और नेवल पावर्स को देखें तो आज हमारे पास बहुत सारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जैसे कि INS विक्रांत, तेजस है जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो है वो अभी हमने हाल ही में सम्मिलित किए हैं और अब ये एक आज जो नई सूचना आई है ये भी बहुत ही सुखद है। और यदि आप लोगों की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी सेना हमारे पास है और बहुत बड़ा बजट 6.81 लाख करोड़ का अपना बजट है, और इसमें आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखिए हमारा 1.27 लाख करोड़ का दर्ज टारगेट है, अब कि इसको हमको 3 से 3.5 लाख करोड़ पहुंचाना है 2029 तक। और इसमें देखिए आप हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम रिन्यू कर रहे हैं या नए कर रहे हैं उसमें से 90 से 95% तक के अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मेक इन इंडिया पर हमने आधारित किए हैं। अलग अलग डिफेंस कॉरिडोर्स का हम अपने देश के भीतर निर्माण कर रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन्हें हमने अपने डिफेंस कॉरिडोर्स के रूप में निर्मित किया है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX पर हम काम करते हैं, तो इसमें हम 25 करोड़ की ग्रांट्स देते हैं स्टार्टअप्स को, और स्पेस में भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो रक्षा के क्षेत्र में लगातार हमने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की।
जी प्रोफेसर जोशी, अगर हम रीजनल कोलैबोरेशन की बात करें, आपने पहले भी काफी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, और खासतौर से अगर मैं जिक्र करना चाहूं जो हमारी सागर योजना है उसका जो पूरा विजन है उससे हमें किस तरह का लाभ मिल रहा है, अगर आप इस बारे में बताना चाहें।
देखिए, जो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, इसको हमने महासागर में भी परिणत कर दिया जो कि है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब पहले मॉरिशस की यात्रा की तब उन्होंने सागर डॉक्ट्रीन दी और फिर उस डॉक्ट्रीन को और आगे ले जाते हुए विजन उसमें और जोड़ते हुए उसको महासागर में परिणत किया। इसकी घोषणा भी मॉरिशस से ही हुई। ये भारत का वो विजन है जिसमें हम पूरे हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र या समुद्री व्यापार, समुद्री सुरक्षा, संस्कृति की दृष्टि से एक किस प्रकार से समुद्री सहयोग का वातावरण, एक पूरा फ्रेमवर्क बने जिसमें नियमन भी हो, नॉर्म्स भी हो, टेक्नोलॉजीज भी हो और इसमें आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन हो। 2015 में इसकी हमने घोषणा की थी और तब से लगातार इस पे हमने अपने बहुत सारे जो लाइक माइंडेड देश हैं उनको जोड़ा है और इसमें बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स किए हैं।
तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। प्रोफेसर जोशी इस कार्यक्रम में भाग लेने और भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सुर्खियों में